गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के गेस्ट प्लांट के इस मंदिरों के समूह के बीच में लंच आवर में आप भाग्यशाली शरीर के भोजन के साथ आत्मा के भोजन का उत्साह के साथ ग्रहण करने के लिए पधारते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। वैसे सारे ही लोग संसार में शरीर को भोजन तो तीन बार देते हैं, लेकिन जिस आधार के ऊपर शरीर टिका हुआ है आत्मा, उसके भोजन की व्यवस्था बहुत कम लोग करने का प्रयास करते हैं। फूड फॉर सोल, रूह की गजा बोलते हैं, फूड फॉर सोल। तो आत्मा के जो तड़प है और आत्मा की तड़प का हमारे जीवन में कैसे पता लगता है कि आत्मा की तड़प है हमारे अंदर। सभी लोग सदा इस संसार में रहने का इच्छा रखते हैं कि हम सदा यहां रहें। आप तो अस्पताल में रहते हैं, लोग बेचारे बीमारी में आखिरी स्तर पे आते हैं, फिर भी समझते हैं कि और हम रह जाएं तो अच्छा है। तो ये सदा रहने की जो इच्छा है ये आत्मा का ये आत्मा के स्तर की है, क्योंकि आत्मा सदा रहने वाला है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है। इसलिए सभी की इच्छा होती है कि हम सदा रहें। ये जो हरेक के मन में धारणा है कि हम सदा रहें, ये है आत्मा का ये आत्मा का स्वभाव है, ये आत्मा का नेचर है, लेकिन क्योंकि हम शरीर से सदा रहने का प्रयास करते हैं वो संभव नहीं है। शरीर तो बदलता रहता है लेकिन आत्मा नित्य है, शाश्वत है। तो ये एक जो हमारी इच्छा सदा रहने वाली है, इसका आत्मा का स्तर है। और दूसरा, सभी लोग कुछ जानना चाहते हैं, इतने सारे सुबह उठ के सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी से पूछते हैं, खबरें टेलीविजन लगाते हैं, क्योंकि जानना चाहते हैं। हर एक की जिज्ञासा होती है क्या हो रहा है, क्या है, जानना चाहिए। तो ये जानने की जो इच्छा है ये भी आत्मा के अंदर इनबिल्ट है, इसको बोलते हैं चित्त। चित्त का मतलब जानकारी। और फिर तीसरा, सबका जो मुख्य भाव बना रहता है वो ये रहता है कि हम सुखी रहें, आनंद में रहें, निरंतर आनंद बना रहे हमारे जीवन में। तो ये तीन जो जिज्ञासाएं सबकी है संसार में, मानव तो मानव, पशु पक्षी भी यही चाहते हैं कि कैसे भी हम सुखी रहें, सदा रहें। तो मानव मात्र जो सदा रहना चाहता है, सब कुछ जानने की जिज्ञासा रखता है और आनंद के लिए बहुत बड़ी तड़प रखता है हृदय में, ये तीनों ही सच्चित आनंद आत्मा के गुण है। आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, आनंद का सागर है और ज्ञान का भंडार है। तो ये जिज्ञासा हमारी आत्मा के स्तर की है, इनको पूरी करने के लिए हमने कभी कुछ प्रयास किया नहीं है सामान्य रूप से। सामान्य लोग इसी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं करते हैं और शरीर से इनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उससे होती नहीं है, इसलिए जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं लोग। और विशेष रूप से जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, तो क्रोध और नहीं तो कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये शरीर के स्तर की चीजें है नहीं। अभी दिल्ली के अंदर तो वो ये बड़ा शहर के बीच में एम्स एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी कोई व्यक्ति कानपुर में बैठ के ढूंढे कि एम्स कहाँ है तो कैसे मिलेगा, वह ही नहीं वहां, तो मिलेगा कैसे। तो जो चीज जहां है नहीं तो वो कहां से मिलेगी। एम्स भी है लेकिन दिल्ली में है, वो भाई कानपुर में नहीं है। हम खड़े हैं कानपुर में और ढूंढ रहे हैं, एम्स तो नहीं मिलेगी। ऐसे सुख है आत्मा के स्तर का, आनंद है आस्था आत्मा के स्तर का, ज्ञान का जो असल में स्रोत है आत्मा है, और हम उसी को ढूंढ रहे हैं शरीर में तो कैसे मिलेगा, वो शरीर में है नहीं तो मिलेगा कैसा। शरीर में तो जो चीज हम आज जानते हैं वो कल भूल जाते हैं, क्योंकि शरीर बदलता है तो चीजें ही भूल जाती। और शरीर में सुख की परिभाषा है दुख को कम करना। शरीर का सुख किसको हम मानते हैं जब दुख कम हो जाए, जैसे गर्मी लग रही है पंखा चल गया तो सुख हो गया, प्यास लग रही है पानी मिल गया तो सुख हो गया। तो असल में अभाव की पूर्ति जो है वो शरीर का सुख है, लेकिन आत्मा में कुछ अभाव नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, बस उसका हमको खोलने नहीं आता है, उस सुख को ढूंढने नहीं आता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। न अस्ति मतलब नहीं है, बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि, अयुक्तस्य जुड़ी हुई, युक्तस्य का मतलब जुड़ी हुई और अयुक्तस्य का मतलब नहीं जुड़ी हुई, जिसकी बुद्धि नहीं जुड़ी हुई है। बुद्धि किससे जुड़नी चाहिए, ये असल में भगवद गीता का भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता, जो असल में आत्मा का भोजन है, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है और ये योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या है का मतलब ये आत्मा का भोजन है, और योग शास्त्र का मतलब भगवान से संबंध स्थापित करने का शास्त्र है। तो न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो जुड़ा हुआ नहीं है भगवान से, जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। बुद्धि भगवान से कैसे जुड़ती है, वैसे शरीर का बुद्धि को सारथी मानते हैं या मंत्री मानते हैं। हमारी बुद्धि हमारा मंत्री है, निर्णय करता है, हमारा सारथी हमको संसार में चलाता है। जैसे अर्जुन ने भगवान को अपना सारथी बना लिया, इसका मतलब बुद्धि में भगवान को बिठा दिया। तो युक्तस्य बुद्धि का मतलब बुद्धि में भगवान को बिठाना। बुद्धि में भगवान को बिठाना क्या, बुद्धि के, जैसे बुद्धि स्त्रीलिंग है, बुद्धि स्त्रीलिंग है, और जो बुद्धि कुछ निर्णय कर ले, किसी चीज को स्वीकार कर ले, उसको कहते हैं मति। बुद्धि का दूसरा नाम है मति। जब वो मत बना ले कोई, जैसे हम किसी को वोट देते हैं, कहते हैं मतदाता, हमने इसी आदमी को चुना, तो वोट में क्या करते हैं, किसी आदमी को हम चुनते हैं, ऐसे हमारी बुद्धि किसी को चुने तो उसको बोलते हैं मति। तो जो बुद्धि भगवान को चुनती है उसको बोलते हैं सती मति। सती मति का मतलब जिसने अपने स्वामी को चुन लिया तो वो हो गई सती। और जो बुद्धि संसार में इधर उधर भटकती है उसको बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका, उसको कहते हैं बहुशाखाय अनंतास, वो बहुत शाखाओं में बिखरी हुई बुद्धि है। इसलिए भीष्म पितामह इस धरती के ऊपर भगवान के महान भक्त 400 साल से अधिक जिए और 12 महाजनों में एक महाजन गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी पहली प्रार्थना में कुरुक्षेत्र में सरसैया के ऊपर सोए हुए भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी मति है, ये वितृष्णा है, इसमें कोई संसार के भोग की वासना है ही नहीं, इसने दुनिया में किसी को पकड़ा ही नहीं है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए भगवान, आप हमारी बुद्धि को ले लीजिए। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं बुद्धि में मुझे बिठाओ, मन मुझको दो, और भीष्म कहते हैं आप हमारी बुद्धि ले लीजिए। इसका मतलब भगवान के शिक्षाओं को वो सार्थक कर रहा है। और फिर भीष्म पितामह कहते तुम तो ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा न विवाह न शादी, तो तेरी लड़की कहां से आ गई जिसको मैं ग्रहण करूं भगवान कहे। तो कहते ये मेरी बुद्धि जो है ये मेरी कन्या है, ये कुंवारी कन्या है, लेकिन अब मेरे को और कोई पुत्र तो है नहीं। जब किसी को कोई पुत्र नहीं हो, केवल पुत्री हो, तो उसका मन करता है जिसके साथ विवाह करे वही हमारे घर में रहे, भाई घर जमाई होके रहे। ये घर जमाई वाली परंपरा कहां से चली, लक्ष्मी का जन्म कहां, लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई, जन्म क्या प्रकट कहां से हुई, खीर सागर से, खीर सागर के मंथन से हुई। और भगवान विष्णु कहां सोए रहते हैं, खीर सागर में, तो ससुराल में है कि नहीं। मतलब पार्वती कहां से प्रकट हुई, हिमालय से। और शंकर जी कहां बैठे हैं, अपना डोना लगा के कैलाश में बैठे, ससुराल में कि नहीं, दोनों अपने ससुराल में रहे हुए हैं, सुखी है बहुत उधर, वो छोड़ के जाते ही नहीं है कहीं। तो ऐसा मन का भाव है भीष्म पितामह का कि अभी ये हमारी बुद्धि जो है इसको आप स्वीकार वरण कर लो, और फिर मेरा कोई है नहीं, आप ही आके इस बुद्धि के साथ मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तो असल में भगवान को दिल में बिठाना है, ये अर्थ है बुद्धि को भगवान को अर्पण करना। और गायत्री मंत्र का जो आखिरी शब्द है वरेण्यम धीमहि, धी मतलब बुद्धि, हमारी बुद्धि भगवान का वरण करे। और वरण, वर कहते हैं जिसके साथ विवाह होता है, और लड़की को वधु कहते हैं, लड़के को वर कहते हैं। तो हमारी बुद्धि भगवान का वरण करे। तो जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई नहीं है तो उसको क्या है, न चायुक्तस्य भावना, ऐसे व्यक्ति के हृदय में अच्छे भाव आएंगे कहां से। इस दुनिया में, संसार में भाव है लोभ लालच के, काम क्रोध के, क्योंकि संसार में यही चीजें हैं, और भगवान में सुख शांति। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है उसमें भावनाएं अच्छी आएंगी कहां से। भावना चेतना, चेतना का मतलब हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस इस शब्द को लिखा है, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, न तो उसकी बुद्धि एकाग्र हो सकती है, न मन एकाग्र हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी लाइन में लिखा है नचा भाव्यतः शांति ही, न है भगवान से संबंध स्थापित नहीं किया बुद्धि ने, तो फिर उसके अंदर भावना नहीं होगी, और जहां भावना नहीं है वहां शांति नहीं होगी। और आखिरी लाइन है अशांतस्य कुतः सुखम, जहां शांति नहीं है वहां सुख कहां से आएगा। तो संसार में सबकी इच्छा होती है कि सुख और शांति मिले, तो पहली आती है शांति, फिर होता है सुख, और शांति आती है जब मन एकाग्र होता है। मन का स्तर, शांति का स्तर है मन का, मन हमारा शांत होना चाहिए। शरीर सुख ढूंढता है, मन शांति ढूंढती है ढूंढता है, और आत्मा आनंद ढूंढता है। ये तीन स्तर की बातें हैं। शरीर में सुख को ढूंढते हैं, लेकिन सुख दुख में बदल जाता है, नहीं अगर मिला तो दुख हो जाएगा। मन शांति को ढूंढता है, लेकिन अगर हमारी इच्छा के अनुसार बात नहीं हुई तो अशांत हो जाएगा। लेकिन आत्मा का आनंद ही है, जिसका तो विपरीत शब्द है ही नहीं आनंद, वो तो निरंतर आनंद बढ़ता ही रहता है, आनंद कम होता ही नहीं। तो जो आनंद आत्मा के स्तर पे आनंद की अनुभूति चाहते हैं, उनको भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। अब आपसे एक ऐसे प्रश्न पूछे सामान्य है कि भाई भगवान श्री कृष्ण कौन है, ये अगर प्रश्न पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, तो आपका क्या उत्तर है? हाँ, परमपिता परमात्मा है, हरे कृष्ण, सबका पिता है। बहुत अच्छा, और सच्चिदानंद है, अच्छा है, और आनंद है, सर्वाकर्षित है। ये तो सब भगवान के गुण हैं, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कौन है?
ग्वाला है।
ग्वाला है तो गैया चराएगा, दूध पिएगा, ये भी अच्छा है। परम पुरुष सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अब मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, आपको अर्जुन कहीं मिल जाए और आप उससे पूछो कृष्ण कौन है, तो वो क्या जवाब देगा? अर्जुन क्या कहेगा, कृष्ण कौन है, मेरा दोस्त है, यही कहेगा ना। और कहीं यशोदा मैया मिल जाए, आप पूछो कृष्ण कौन है, क्या कहेगी, मेरा बेटा। और कहीं हनुमान मिल जाए, आप पूछो राम जी कौन है, क्या कहेगा, मेरा स्वामी है। अब भले भगवान दुनिया के लिए है, लेकिन ये सब अपना संबंध बताते हैं। ऐसे जब हमारा संबंध भगवान के साथ नहीं जुड़ा है, तब तक हमारे आत्मा की भूख पूरी नहीं होती। इसलिए एक संबंध बहुत सरल और सुगम सबके लिए है, भगवान कौन है, मेरे स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। ये है सबसे सेफ, महान, उत्तम संबंध। भगवान जो भी है, लेकिन मेरा स्वामी, वो मेरा स्वामी है, मैं उसका सेवक हूं। क्योंकि ये चेतना महाप्रभु ने जब बंगाल के मुख्यमंत्री ने नवाब हुसैन शाह के सरकार को त्याग कर चेतना महाप्रभु के पास बनारस में आए साधु बनके, तो उन्होंने पहला प्रश्न ये पूछा कि लोग मुझे मंत्री कहते हैं, विद्वान कहते हैं, समझदार कहते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। और दूसरा, संसार में सब सुख के लिए भागा दौड़ी करते हैं, लेकिन सबको दुखी पले पड़ता है, क्यों? और तीसरा प्रश्न पूछा कि आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जाए। तो ये जो तीन प्रश्न हैं, ये एक बुद्धिमान मानव को जीवन में पूछना चाहिए। मैं कौन हूं, संसार में सुख की भाग दौड़ में कभी सुख मिलता नहीं है, हमेशा परेशानी पले क्यों पड़ती है, और आखिर जीवन का लक्ष्य है क्या और उसका साधन क्या है, कैसे प्राप्त हो। तो पहले प्रश्न के उत्तर में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप ही है कि भगवान का नित्य सेवक है। एकल कृष्ण ईश्वर आर सब भृत्य, एक भगवान स्वामी है बाकी सब सेवक है। हम इस दुनिया में दुख इसलिए भोगते हैं कि हम सब स्वामी बनने के चक्कर में, हम सब कॉम्पिटिशन कर रहे हैं कि हम भी स्वामी बन जाएं, लेकिन नहीं, सेवक हमारा स्वरूप है। आप देख लीजिए दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो किसी की सेवा न करता हो, पशु पक्षी से लेके मानव तप, सेवा सबका धर्म है कि नहीं है। चिड़िया दाना लेके आती है अपने बच्चे को खिलाती है, गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, प्रेम के कारण सेवा उनका धर्म है। तो सेवा कहाँ होती है, जहां प्रेम होता है। असल में हमारे हृदय में भगवान ने प्रेम को भर के रखा है, उस प्रेम का प्रदर्शन सेवा से होता है। संसार में आप किसी से प्रेम करते हो तो कैसे दिखाओगे, सेवा के माध्यम से। तो सेवा हमारा धर्म इसलिए है कि हम भगवान हमसे प्रेम करता है, हमको भगवान से लौट के प्रेम करना चाहिए और वो प्रेम सेवा से प्रदर्शित की होता है। तो असल में एक ही संसार में धर्म है प्रेम, बाकी सब मजहब हैं जो बदलते रहते हैं, लेकिन प्रेम के धर्म में कोई परिवर्तन कभी आ ही नहीं सकता। और वो प्रेम है सेवा से संपन्न होता है, वो प्रेम सेवा से परिपूर्ण होता है। तो इसलिए जीव का धर्म सेवा है। भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका आप भाई बड़ा बलराम हो या पिता नंद बाबा हो या प्रेम करने वालों में परिकाष्ठा के ऊपर राधा रानी हो, चाहे सामान्य कोई, संसार में भगवान का भक्त तो सभी सेवा करते, सभी सेवा करते, कोई भी ऐसा नहीं है, सेवा सभी करते हैं। लेकिन सेवा में जितनी हमारी, जैसे दूध में जितनी मिठाई ज्यादा डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा, तो सेवा में जितने भाव बढ़ते जाएंगे तो दास्य से सखा हो जाएगा, सखा से वात्सल्य हो जाएगा, वात्सल्य से मधुर्य हो जाएगा। लेकिन सारे भावों के अंदर सेवा मुख्य है। जैसे मिठाई कोई भी हो लेकिन उसके अंदर मिठास सभी में एक ही होती है, फिर उसका रंग कैसा हो, नमूना कैसा हो, लेकिन मिठान तो चाहिए तब उसका नाम मिठाई है। ऐसे सेवा है तब संबंध है। तो संबंध सारा सेवा से है। जब तक भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ तब तक शांति संसार में नहीं। एक शांति का सूत्र प्रभुपाद जी पांचवें अध्याय का आखिरी श्लोक बोलते थे, पांचवें अध्याय का भगवद गीता का आखिरी श्लोक को श्री प्रभुपाद जी शांति का सूत्र बोलते थे। जिसको शांति चाहिए उसका ये सूत्र है, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जानता है उसको शांति मिलती है। क्या जानता है? भगवान भोक्ता है। भोक्ता का मतलब होता है एंजॉय। भाई ये दुनिया बनाई किसने? तो जो बनाएगा वही उसको भोगेगा ना। आपने अपना घर बनाया, आप उसमें सुख ले रहे हो, तो जो चीज जो बनाता है उसका भोक्ता वही होता है। तो भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूं इस जगत का। क्यों? मतलब तो कहते क्यों, बोला सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों का स्वामी मैं हूं, मैंने बनाए तो मैं इसका स्वामी, मैं इसका भोगता हूं। बोला क्या भोगते हो भगवान? आपको कौन सी चीज में एंजॉयमेंट होती है, क्या चीज चाहिए? तो नहीं धन मांगते हैं, ना कोई खाने की चीज मांग रहे हैं, किस चीज को भोगते हैं? बोलते यज्ञ को भोगता हूं। आप यज्ञ करो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, और मैं प्रसन्न हो जाऊंगा आप भी प्रसन्न हो जाऊंगा, परस्पर एक दूसरे को प्रसन्न करेंगे। कैसे? बोला यज्ञ करो। अब कौन सा यज्ञ करें, कहां से लाएं गाय का घी, कहां से लाएं पंडित को, कहां से लाएं लकड़ी, ये तो सब आप घर में फ्लैट में हो नहीं सकता है यज्ञ, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई बात कही होगी जो सब लोग नहीं कर सकते हो? भगवान जब कोई बात कहते हैं तो सब लोग कर सकते हैं, सब समय कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं, तो भगवान का सिद्धांत सरल है। तो कौन सा यज्ञ है जो सब कर सकते हैं? जप यज्ञ। तो भगवत गीता में आगे 10वें अध्याय में आ जाएगा, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, जितने भी यज्ञ इस पृथ्वी के ऊपर शास्त्रों में मैंने प्रमाणित करके दिए हैं, उनमें से मेरी विभूति या मेरे को तत्काल पाने वाला यज्ञ जप नाम का यज्ञ है। अब ये यज्ञ कौन नहीं कर सकता है? न पैसे का खर्च नहीं है, जबान को हिलाना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप यज्ञ है। और जैसे इकट्ठे हो जाए सब ऐसे गए, तो फिर एक और यज्ञ बता दिया, संकीर्तन यज्ञ, सब मिलके भगवान के नाम का कीर्तन करें तो वो संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। और कलयुग के अंदर ये दो यज्ञ मुख्य रूप से, व्यक्तिगत जब हम बैठते हैं तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, और जब परिवार में घर में बैठे तो 20 मिनट आधा घंटा रोज का भगवान के नाम का संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। भगवान इस यज्ञ को भोगते हैं। बोला और क्या भगवान भोगते हैं? बोला तपस्या को भोगता हूं। जब हम तपस्या करते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, और ये तपस्या हम सब दुनिया में कर रहे हैं। आप भी सुबह सुबह घर से निकलते हो, घंटा डेढ़ घंटा कैसे भी सफर करके काम पे आते हो, ये बहुत कठिन है तपस्या। कभी बस में आना पड़ता है तो कैसे खड़े होके आना पड़ता है, ट्रेन में आना पड़ता है खड़े होके आना पड़ता है, छोटे बच्चों को सुबह सवेरे 6 बजे उठा के और 5 किलो पोथी उसके पीठ पे लाद के भेजते हैं स्कूल, तपस्या नहीं है? बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन वो तपस्या जिसके लिए भारतवर्ष में भगवान नर नारायण का अवतार लिया और जिस नाम के पीछे भारत का नाम भारतवर्ष हुआ, वो महाराज भरत के पिता ऋषभदेव भगवान के अवतार कहते हैं, बेटा तपस्या सब करते हैं लेकिन दिव्य तपस्या करो, तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या मतलब वो तपस्या जिससे भगवान की प्राप्ति हो। बोला वो कौन सी तपस्या? बोला भारत भूमि तपस्या के लिए बना है, ये है तपस्या की भूमि। यहां के अवतार भगवान भारत भूमि में नर नारायण आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। आप जाके बैठेंगे तो बद्री नारायण ऐसे आज भी योग आसन में तपस्या में बैठे हैं, और जब टेम्परेचर 5-6 होता है, ठंडी होती है, तब भी उनके शरीर को चंदन का लेप लगता है क्योंकि गर्म हो रहे हैं तपस्या में। तपस्या में मतलब तपना, तो रोज उनको चंदन का लेप लगता है। आप उनका कभी दर्शन करने जाएं, बद्री का आश्रम अब खुला हुआ है, कभी जाते हैं सब भाग्यशाली, तो वैसे दिन में दर्शन में तो नहीं आता है, रात को जब उनका शयन आरती होती है, जब उतारते हैं श्रृंगार, तब ये दर्शन होता है, या सुबह मंगल आरती में दर्शन होता है। कभी उसको देखेंगे तो ऐसे योग आसन में बैठे हुए हैं, हाथ ऐसे रखा हुआ है और पूरा शरीर दिखेगा, चंदन का पूरा कपड़ा लपेट के रखते हैं ऊपर। तो तपस्या इस धरती के ऊपर, तपस्या मानव करेगा तभी सुखी होगा। तो हम सब तपस्या कर ही तो रहे हैं, मुश्किल काम है। तो भगवान को कौन सी तपस्या अच्छी लगती है? ये कथा सुनते हैं 1 घंटा, ये तपस्या है। एकादशी आ गई, व्रत रखा, ये तपस्या है। बैठ के जप करना है, वो भी तपस्या भी है, और यज्ञ भी, दोनों है एक में। तो अगर हमारा समय कुछ रोज शास्त्र पढ़ने में लग जाए, भगवान के नाम में जप के जप में लग जाए, तो ये हमारी तपस्या हो गई। ये बात कहने के बाद भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द कह दिया कि मैं सुहृद सर्वभूता नाम, इतना नहीं है कि मैं आपका भोगता हूँ, मैं आप सबका भला चाहने वाला हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, आपका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, कभी आपको हमने अकेला छोड़ा नहीं है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए हमेशा आपके हृदय में बैठा हूँ, मैं आपका सुहृद हूँ। सुहृद का मतलब है दिल भर दोस्त, जो दिल में बैठा हो। सुहृद स मने साथ, हृदय मने दिल में, आप भी दिल में बैठे, मैं आपकी दिल में बैठा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं है। बोला अगर आप पहचान लो मुझे सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम् ऋच्छति, अगर आप मुझे जान लोगे तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, और जैसे शांति मिलेगी तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो भगवान से शांति कैसे करें? इस दुनिया में सभी कहते हैं हमको संसार में शांति करो, अमन शांति हो जाए, अमन शांति हो जाए। अरे जब तक भगवान से शांति नहीं करेंगे दुनिया में शांति कहां से होगी? भगवान से हमने समझौता किया नहीं, शांति की नहीं, भाई शांति कैसे करते किसी से, अमन शांति कैसे होता है? भाई मैंने कहा आपने मान लिया तो शांति हो गई, भाई शांति का यही सूत्र है, हमने कहा आपने मान लिया, आपने कहा हमने मान लिया तो शांति हो गई। और तो भगवान कह रहे हैं कि जप करो यज्ञ करो, हम नहीं करेंगे तो शांति कहां से आएगी? भगवान कह रहे हैं तपस्या करो, हम नहीं करेंगे तो कहां से शांति आएगी? भगवान कह रहे हैं भक्त बनो, हम नहीं बनेंगे तो शांति कहां से आएगी? तो शांति पहले भगवान से करो तो संसार में शांति हो, पहला संबंध भगवान से स्थापित करो तो संसार के संबंध अपने आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, लेकिन अलग अलग डाली के ऊपर पानी डालने से, पत्ते के ऊपर पानी डालने से कोई वृक्ष हरा भरा नहीं होता है। तो भगवान तो है सबकी जड़, वो कहता है मुझसे शांति करो तो संसार में शांति हो जाएगी। भाई मेरे से तो अलग कुछ दुनिया में है नहीं, मैं संतुष्ट तो जगत संतुष्ट, तुष्टम भगवान संतुष्ट हो गए तो जगत संतुष्ट हो जाता है। और ये द्रौपदी ये यहाँ ही है, हस्तिनापुर यहां से 40 किलोमीटर दूर है गंगा।